ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, भारत में सुदृढ़ होते शहरी परिवहन और आसान होते नागरिकों के जीवन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए से अधिक की नई परियोजनाओं की शुरुआत की और आधारशिला रखी। इसमें खास तौर पर अर्बन कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की परियोजनाओं की उन्होंने शुरुआत की, आधारशिला रखी, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, नमो भारत ट्रेन, जिसे रैपिड रेल भी बोलते हैं, उसकी कनेक्टिविटी पहली बार दिल्ली में हुई है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए केवी प्रसाद जी मौजूद हैं। केवी प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में आपका।
धन्यवाद हर्ष जी।
प्रसाद साहब, एक वक्त था जब यहाँ से मेरठ जाने के लिए 4-4 घंटे लगते थे। आपको ऐसा लगता था कि जैसे पूरी शिद्दत के साथ आप तैयार हों और एक संघर्ष करते हुए पहले तो दिल्ली से ही बाहर निकलने में, गाजियाबाद, हापुड़, इन सबको क्रॉस करते हुए कई बार ऐसी स्थिति होती थी कि 4-4 घंटे लग जाते थे। अब यही यात्रा हम लगभग 40-50 मिनट में, घंटे भर से कम समय में कर पा रहे हैं। और जो नमो भारत ट्रेन है, अब इसकी पहुंच दिल्ली के आज अशोक नगर तक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इसमें साहिबाबाद से अशोक नगर तक की यात्रा की, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ ही जो शहरी कनेक्टिविटी, जिसे अर्बन कनेक्टिविटी बोलते हैं, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। आप कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे?
जी हर्ष जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक वर्ष जब हम बड़े हो रहे थे, शायद उस की बात है कि वक्त बहुत लगता था दिल्ली से मेरठ जाके, हालांकि पड़ोस में है, लेकिन जो परिकल्पना हुई कई वर्षों पहले की नेशनल कैपिटल रीजन, जिसे हम NCR के नाम पे जाते, तो दिल्ली से 70 किलोमीटर के दूर में जो अलग अलग शहरी इलाके बसे हुए हैं या आसपास के जो है, उनसे कनेक्टिविटी, क्योंकि आपको याद होगा कि कई लोग वहां से रोज दिल्ली आते थे अपनी नौकरी करने के लिए और वापस रात को ट्रेन में जाते थे, और वहां से जैसे आपने ठीक कहा कि ट्रेनें चलती थी, सुबह 6 बजे चलते थे, सुबह 9 बजे की नौकरी के लिए दिल्ली पहुंचते थे, फिर नौकरी खत्म करके फिर ट्रेन बैठते, मतलब पूरी जिंदगी उनकी सफर में गुजर जाती थी, या सफर में या दफ्तर में। उसके बाद अब जैसे इसको हम फास्ट फॉरवर्ड करके आज के संदर्भ में बात करें, आज के फर्राटेदार जिंदगी में लोग के पास वक्त कम है और बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, काम करने के लिए परिश्रम और जो है श्रम देना चाहते हैं। तो ऐसे में ये जो आपने बात रखी अर्बन कनेक्टिविटी, और चूंकि इसमें दो चीज देखिए, अगर सोशल की एक तो इंटीग्रेशन तो हो ही रहा है हमारा सैटेलाइट टाउन्स के साथ, और तीव्र गति से आप एक दूसरे के यहाँ आवाजाही हो जाएगी, और साथ ही साथ आप देखिए कि दिल्ली के ऊपर जो प्रेशर पड़ता था, जो NCR की परिकल्पना की गई थी कि दिल्ली का प्रेशर डिसेंट्रलाइज कैसे करें ताकि कनेक्टिविटी जो सैटेलाइट टाउन से बढ़े और शीघ्र बढ़े, ताकि लोग आए अपना व्यवसाय करें या जो भी कार्य करें दिल्ली में, या दिल्ली के बाहर दिल्ली से जाके भी सैटेलाइट टाउन्स में कुछ लोग अपना बिजनेस पर्पसेस के लिए जाते हैं। तो ये जो तीव्र गति से अब कनेक्टिविटी होगी, जैसे आपने कहा अर्बन माइग्रेशन, तो एक तरह से उसपे भी एक अंकुश लगेगा, और साथ ही साथ जिसे है कि एक कनेक्टिविटी जैसे आपने कही, और ईज ऑफ ट्रैवल जिसे कहते हैं, जिसके मैंने जिक्र किया, तो ये सब दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही स्वागतपूर्ण कदम है, और मेरे ख्याल से कदम तो पहले उठाए गए थे लेकिन जिसे कहते हैं उनको कार्यान्वित होते होते ठोस आयाम पे पहुंच रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है हर्ष जी।
बिल्कुल, ईज ऑफ ट्रैवल की जब बात करते हैं, तो जब इसकी परिकल्पना की गई थी RRTS की, नमो भारत की, तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू इसका ये था कि अब लोग सिर्फ बैठकर ट्रैवल ही नहीं करते हैं, जो भी समय लग रहा है, 50 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे ट्रैवल में, उस वक्त आप कुछ न कुछ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जमाना आगे बढ़ा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, और हर किसी के हाथ में मोबाइल रूपी कंप्यूटर है, तो वो या तो कंप्यूटर पे अपने काम कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है, कुछ प्रेजेंटेशन बना रहा है, अपने ऑफिस की तैयारी कर रहा है। तो इसे भी देखते हुए हमने देखा कि हर मेट्रो ट्रेन में, नमो भारत में, यात्री उसमें अपने फोन को चार्ज करते हुए ऑफिस का काम भी कर रहे हैं। तो इससे कहें कि एक तरीके से जो वर्क आउटपुट है, व्यक्ति का बढ़ रहा है, समाज का बढ़ रहा है, और इससे पूरे देश का बढ़ रहा है। तो आप बिल्कुल इस बात को तो मानेंगे कि जिस 2047 की हम बात कर रहे हैं कि हम विकसित भारत होंगे, उसमें भी ये ईज ऑफ ट्रैवल एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। क्यों प्रसाद साहब?
बिल्कुल हर्ष जी, और ईज ऑफ ट्रैवल में जैसे आपने कहा, जो सुविधाएं पहले जिस दौर की आपने शुरुआत में चर्चा की, उस दौर में होता क्या था, आपने एक बस पकड़ी, मालूम है बस 3 घंटे लेगी दिल्ली से मेरठ में, या तो आपको एक किताब या नॉवल अगर आपको, और वो भी तभी तक हो जब बाहर की रोशनी हो, क्योंकि बस के अंदर शाम हो जाए तो लाइट की सुविधा उस तरह से नहीं होती थी, और ये मोबाइल वगैरह तो थे ही नहीं हमारे पास, तो या तो अधिकतर लोग सोते होते थे या एक दूसरे के साथ बातें करके वक्त गुजारते थे। अब चूंकि जैसे जमाना हो गया, लोग फोकस हो गए अपने काम के प्रति, क्योंकि एक तो प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है और दूसरा हर आदमी चाहता है कि विकास की दौड़ में आगे रहे, सबकी महत्वाकांक्षा है कि एम्बिशियस हो गए लोग, कुछ कर गुजरने की उनमें ठानी हुई है। तो जब तक सुविधाएं नहीं होंगी तो काम नहीं हो पाएगा। और जैसे आपने कहा, आप और मैं अगर मेट्रो में भी जाते देखते होंगे, लोग अपना सुबह से व्यवसाय कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, कोई दफ्तर का काम कर रहा है या प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अपना वक्त ही एक जैसे प्रोडक्टिव टाइम बढ़ गया एक। और दूसरा जैसे अपना ईज ऑफ ट्रैवल की हमने बात की, उसके साथ साथ ये होता है ईज ऑफ लिविंग, यानी जीने के लिए जो और सुविधाएं और साधन हो गई है, और आप को अपने लक्ष्य पहुंचने में जिसे कहते हैं ये सब एडिशनल फैक्टर्स हैं, तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि ये क्या कर रहे हैं। ये फाउंडेशनल चेंजेस हो रही है हमारे समाज में और पूरे व्यक्तिगत की सोच में, ऐसा मेरा मानना है।
प्रधानमंत्री ने प्रसाद साहब एक और खास बात आज कही, इसका उल्लेख किया कि आज का दिन मेट्रो रेल के लिए भी एक खास दिन है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत में जो मेट्रो रेल है अब 1000 किलोमीटर की यात्रा मेट्रो रेल कर रही है, इसका ट्रैक जो है 1000 किलोमीटर का हो गया है। अगर 2014 10 साल पहले से आप देखें तो 248 किलोमीटर का रेल ट्रैक होता था और भारत दुनिया के 10 उन देशों में भी नहीं आता था जो मेट्रो रेल पे टॉप पर हैं। लेकिन अब भारत इस पैमाने पर तीसरे स्थान पर है और 1000 किलोमीटर का हमारा मेट्रो रेल का ट्रैक है। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप इसे?
आपने जो बात की मुझे याद आ रहा है कि सन 2000 के आसपास प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त मेट्रो का पहला लाइन दिल्ली में फ्लैग ऑफ किया गया था। लेकिन उससे कम से कम 15-10 साल से पहले हम इस तरह की खबरें पढ़ते थे उस जमाने में कि एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एक परिकल्पना की जा रही है, लेकिन उसको कार्यान्वित होते होते कम से कम 20-21 साल लग गए। और लेकिन एक बार शुरू हुआ, अगले 20 साल का तेजी देखिए, जैसे आपने अपने आंकड़े कहे कि प्रधानमंत्री जी ने खुद उसको कहा कि 1000 किलोमीटर तक आज रेल लाइन चल रही है मेट्रो की, और मेरे ख्याल से कम 400 किलोमीटर तो दिल्ली शहर में है, दिल्ली और आसपास जो मेट्रो कनेक्टिविटी है, दिल्ली है, गुड़गांव है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है। और बहुत पुरानी, कम से कम 10 साल पुरानी बात में एक स्टडी बता रहा हूँ, अर्बन प्लानर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा किसी भी शहर में डीकंजेस्ट करने के लिए, मतलब सड़क से यातायात कम करने के लिए मेट्रो की जाल कम से कम 400 किलोमीटर की जरूरत है। और इन्होंने कहा था एक अर्बन स्टडीज में हमको ये सिखाया जाता है कि मेट्रो की जाल अगर 400 किलोमीटर की हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो इतनी सड़कें, इतने बसें या इतनी अन्य वाहन सड़कों से कम होगी। आज करीब करीब 21 शहरों में मेट्रो चल रही है, प्रधानमंत्री जी ने आंकड़ा किया, तो मेरे ख्याल से इसमें ये भी है 21 शहरों में ये चल रही है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन कार्य प्रगति में है। और हम सुन रहे हैं कि जैसे आगरा जैसे शहर में भी तैयारी हो रही है या कहीं और अन्य राज्यों में, अभी कहीं सुन रहा है कि चंडीगढ़ में भी ये मांग उठ रही है कि यहाँ मेट्रो चले। तो अब एक तरह से मूवमेंट बन गया है कि हर शहर में अर्बन मोबिलिटी को कैसे हम करें। और शायद आंकड़े अगर आप देखें, अभी आपने नमो भारत की बात कही कि जब ये पूरी तरह कार्यान्वित हो जाएगा 81 किलोमीटर के जो परिकल्पना है, करीब 2.5 लाख वाहन सड़क से कम हो जाएंगे ऐसा अनुमान है, और पता नहीं कितने लाख टन कार्बन का उत्सर्जन या कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। और ये अगर एक बड़ा लक्ष्य जो भारत का है, इंटरनेशनल कमिटमेंट किया है कि हम कितना कार्बन एमिशन को कम करते चलाएंगे, ये उसकी तरफ में भी एक बहुत अच्छा कदम है।
ना सिर्फ लोगों को ईज ऑफ ट्रैवलिंग की सुविधा मिलेगी बल्कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अर्बन कनेक्टिविटी जिस तरीके से सरकार बढ़ा रही है, इससे पर्यावरण में भी सुधार होगा। और जो हम ये देख रहे हैं कि कई बार AQI जिसे बोलते हैं वो बहुत खराब हो जाती है, हवा का स्तर जो है वो बिगड़ जाता है, ऐसे में उसमें भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा इस अर्बन कनेक्टिविटी की वजह से, नमो भारत जैसी ट्रेनों की वजह से या जो मेट्रो रेल है इसकी वजह से। प्रसाद साहब, आप बात कर रहे थे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की, और मुझे वो फिगर पिछले वित्त वर्ष का याद आता है, मतलब चालू वित्त वर्ष में जो 11,11,111 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर वित्त मंत्री ने दिए हैं, और अगर आप 10 साल पहले देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास ही हमेशा बजट मिलता रहा है। 5 गुना बढ़ोतरी हुई है और इससे पूरे देश में न सिर्फ अर्बन बल्कि रूरल एरियाज में भी एक कनेक्टिविटी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है हॉलिस्टिक लेवल पर। इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम से हमारी इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है फ्यूचर में?
हर जी देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हम और आप जानते हैं कि मूलभूत सुविधाएं देना जरूरी है, और कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी रेल कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, जो तमाम सारी सरकार की परिकल्पना है। क्योंकि जो विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, अगर 2047 तक हम एक विकसित भारत के उद्देश्य से लेके चल रहे हैं, तो उनमें ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखिए, जो हमारे आसपास के राष्ट्रों को छोड़ दीजिए, जो विकसित राष्ट्र हैं, अत्याधुनिक पोर्ट्स हैं, आप सामान लादते हैं, लोड अनलोडिंग करते हैं, आप इंटरनेशनल चीज पढ़िए, पोर्ट में कितना टर्न अराउंड टाइम, यानी कि कितने कम से कम टाइम में जहाज जो है बंदरगाह पहुंचे, सामान अनलोड करे, दूसरा सामान लोड करे और निकल पड़े, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, ये उनकी रेट ऑफ टर्नओवर पे गिनता है। अभी हमने बात की अर्बन कनेक्टिविटी, जो कि बहुत जरूरी है, पर्यावरण की दृष्टि से भी उसको देखा, ईज ऑफ ट्रैवल, लोगों को चाहिए सुविधा आज सफर करने में। तो अगर आपको याद हो कि जब वाजपेयी जी की सरकार बनी, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यानी जो परिकल्पना की गई थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को एक बहुत बड़े जाल बिछाया जाए कि भारत के चारों कोनों को कनेक्ट करें। और उसके बाद एक स्टडी की गई थी आंध्र में, और देखा गया था जो एक सेक्शन जो उन्होंने बहुत जल्दी से कार्यान्वित करके तैयार किया, कि उस आवाजाही से ट्रेड कई गुना बढ़ गया उस इलाके में, क्योंकि लोगों को इतनी सुविधा मिलने लग गई सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, और तीव्र गति से पहुंचाना, और बड़े आराम से पहुंचाना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को साथ मिलके देखा जाता है हमेशा। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो आपके लोगों के रोजगार बढ़ेंगे, इकोनॉमी, जिसे कहते हैं व्हील्स ऑफ इकोनॉमी, जो है वो चलने लगती है। हर्ष जी,
बिल्कुल, और इससे आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि इससे रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ने से लोगों की इनकम बढ़ेगी, और उससे जो एक चक्र है कंजम्पशन का, वो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2.8 किलोमीटर का जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच का जो फेज 4 का मेट्रो है, इसका भी उद्घाटन किया। लगभग 1,200 करोड़ रुपए की लागत से ये लाइन 2.8 किलोमीटर की बनी है, और इससे भी लाखों लोगों का फायदा होने जा रहा है। आइए सुनते हैं कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के बारे में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं क्या कह रहे हैं।
दिल्ली मेट्रो चप्पे चप्पे तक पहुंची, तो ये काम भाजपा की केंद्र सरकार ने किया। बीते एक दशक में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क दोगुने से भी अधिक हो चुका है। रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर पर भी काम शुरू हुआ है। ये जो नमो रेल प्रोजेक्ट है, ये भी केंद्र सरकार बना रही है।
तो हमने सुना प्रधानमंत्री किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और अगले 25 साल वो बता रहे हैं कि बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि अगले 25 साल में हम पूरी तरीके से एक विकसित राष्ट्र होने जा रहे हैं, और विकसित राष्ट्र की जो गरिमा होती है, विकसित राष्ट्र में जो आपको सुविधाएं मिलती हैं, वो सब कुछ यहाँ होने जा रहा है, और उसमें हर किसी के सहयोग की जरूरत है। आपकी एक अंतिम टिप्पणी प्रसाद साहब।
देखिए, ये बहुत जरूरी है। जैसे हमने अर्बन मोबिलिटी वगैरह बात की, पारंपरिक हमारी जो पद्धति है चिकित्सा पद्धति, इसके ऊपर भी सरकार का पूरा ध्यान शुरू से रहा है, और आयुष मंत्रालय इसी के तहत है। और आपको याद होगा, पिछले कुछ वर्ष पहले WHO के साथ भी एक समझौता किया गया था कि इस पद्धति के लिए किस तरह से हम इस पे और शोध करें, ताकि ना सिर्फ भारत, भारत की जो पारंपरिक पद्धति है उससे पूरा विश्व में कैसे लोगों को ऑल्टरनेट मेडिसिन का एक प्रोविजन हो। और इसमें, क्योंकि आयुर्वेद के बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि ये एज कम्पेयर टू अदर साइंस ये क्वांटिफाइड नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये उस चीज को भी एड्रेस करेगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रोहिणी में, उसके नई बिल्डिंग के लिए जो आज किया है फाउंडेशन स्टोन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे चल के जरूर ये पद्धति को और आगे बढ़ाएगी, ऐसा हम सब चाहते और हमारी मंशा भी है। हर्ष जी,
बिल्कुल, आज कई नई परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है, जिससे लोगों को ईज ऑफ ट्रैवलिंग होगा, और सिर्फ ईज ऑफ ट्रैवलिंग ही नहीं, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और वर्क आउटपुट भी बढ़ेगा, जिससे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, और अगले 25 साल में जिस विकसित राष्ट्र का संकल्प राष्ट्र ने किया है, वहां तक पहुंचने में आसानी होगी। बहरहाल, KV प्रसाद जी, आपका आकाशवाणी से जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत में सुदृढ़ होते शहरी परिवहन और आसान होते नागरिकों के जीवन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार KV प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।